ज्ञान के अधिकारी के विषय में आज कुछ बात करेंगे। ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? अनाधिकारी को ये ज्ञान हजम नहीं होता है, अनाधिकारी को ये ज्ञान उसके अहंकार को श्रृंगारित करने के लिए एक अस्त्र हो जाता है, और जो अधिकारी है उसके लिए यही ज्ञान परम मुक्त अवस्था को अनुभव कराने के लिए एक अचूक साधन बन जाता है। शरीर में आसक्त हुआ इंसान ये नहीं कह सकता है मैं सच्चिदानंद हूं। माने आप तो दो पैरेलल सत्ताएं बना ली, एक तो मेरा अनुभव ये है कि मैं देह हूं पर बोलने के लिए मैं सच्चिदानंद हूं, ऐसे मैं शरीर हूं, शरीर से ममता है, मौत का डर है, आसक्ति है, ममता है, परिवार से ममता है, शत्रुओं का भय है, मृत्यु का भय है, राग भी है, द्वेष भी है, पर ऐसे में सच्चिदानंद। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। देह भाव मिटाए बगैर मैं चेतन हूं ये भावना नहीं बन सकती, और देह में हूं सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये तुम्हारा चलता है, नहीं चलता क्या? ये याद करना पड़ता है, वो भी कोई कराए तो, कि देह हम नहीं है। ऐसे तो जो जिसे हम कहेंगे ना फैक्ट्री सेटिंग तुम लोगों की, ये है कि हम शरीर हैं। तुम ये नहीं कहते हो कि मन आंखों के द्वारा बाहर रंग देख रहा है, मन बुद्धि कानों के द्वारा शब्द सुन रहे हैं, शरीर ने भोजन खाया है, बुद्धि को समझ कुछ नहीं आया है, आप वो डिस्टेंस जानते ही नहीं, अनुभव में नहीं, इसलिए भाषा में नहीं, तो कारण क्या हो सकता है? सुन के भी बात का निश्चय नहीं जब हो तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा यह है कि अधिकार की कुछ कमी है। और ज्ञान ऐसी अद्भुत वस्तु है, इसके जैसी कोई दूसरी है नहीं, जिसका अधिकार नहीं है उसको सुना दो, सब कुछ सुना दो तो भी वो अंधा ही रहेगा। और ज्ञान की यही महिमा है कि जिसके अंतर उसके लिए तैयारी होती है वो उसी के अंतर अपने इस चमत्कार को देता है। तो शब्दों के ज्ञानी बनना बड़ा आसान है, और जो शब्द के ज्ञानी हैं उनको तो विचलित करना इतना आसान काम है, जरा सी बात में तो फूक निकल जाती है, अब फुग्गा है, फुग्गे में तो बच्चा भी मुक्का मारे, सुई भी लगा दो तो भी उसकी हवा निकल जाती। तो शब्द सुन के, उन्हें रट के, उन्हें याद करके, खुद अनुभव तो किया नहीं लेकिन ये मानने लग गया मुझे सब पता है, ऐसा शब्द का जो ज्ञानी होता है वो अपने लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही, वो साथ ही साथ और दूसरों के लिए भी दुश्मन हो जाता है, क्योंकि वो अपना ज्ञान बघारेगा, सबको सुनाएगा और हरकतें वही होंगी जो दूसरे एक आम आदमी की होती। जीभ पे संयम नहीं, मन पे संयम नहीं, लड़ाई करता है, निंदा करता है, जरा जरा सी बात पे उखड़ता है, गुस्सा खाता है, घृणा करता है, पर ऐसे ज्ञानी हूं ये भी बोलता है। तो दूसरों के लिए, समाज के लिए ज्ञानियों की एक परिभाषा हो जाती है कि शब्द में बड़े पर काम में हमसे भी गए गुजरे। बहुत लोगों को लगता है ज्ञान मार्ग आसान है, सुनो मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मैं तो सच्चिदानंद हूं, बस बात खत्म हो गई। ये योग वोग बड़ा मुश्किल है, उल्टे सीधे आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा करो, ध्यान करो, कौन करे? हमारे गुरुजी ने तो हमें बता दिया तू शिव स्वरूप है, बस बात ही खत्म हो गई। हीरे का हार बंदर के हाथ में आ जाए तो वो क्या करेगा? उसे पत्थर समझ के फेंक ही देगा और क्या करेगा? तो अनाधिकारी ज्ञान के हीरे को भी फेंक देता है, और जगत में ऐसे कूड़ ज्ञानियों की वजह से ज्ञान की महिमा भी कम होती, बहुत कम होती। तो ज्ञान का अधिकार किसका है, इस विषय में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले ज्ञान के अधिकार की शुरुआत होती है विवेक से, जिसके अंदर विवेक हो। विवेक मतलब क्या सत्य है क्या असत्य है ये मालूम है। देखो अभी ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान की तैयारी है ये। विवेक पहला गुण, देह असत है, देह के सहित ये सारा संसार जो पंच तत्वों का बना है ये असत है, जिसको निश्चय है, और आत्मा ही सत्य है ये भी निश्चय, बुद्धि में निश्चय पूरा। अनुभव चूंकि अभी नहीं हुआ इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन इस अनुभव की दिशा में चलने के लिए सर्वप्रथम जो चीज चाहिए उसको हम कहते हैं विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट इज अनट्रुथ, व्हाट इज चेंजेबल एंड व्हाट इज नॉन चेंजेबल, व्हाट इज मॉर्टल एंड व्हाट इज इमॉर्टल। ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ देखे सुने बोले, और तो और अपने शरीर को जब देखता है शीशे में या अपनी आंखों से अपने ही शरीर को देखता है, उतनी बार उसके अंतर ये बिजली कौंधती है असत। तो असत से जिसका मन हट गया है ये प्री रिक्वेस्ट है, ऑप्शन नहीं है, ये हो ना हो ये चाहिए, होना ही चाहिए। विवेक, वैराग्य, वैराग्य मतलब किसी से राग नहीं है और सबसे वो अपने आप को पीछे हटाता जाता है। उसके मन में संसार भोगूं चाहूं प्राप्त करूं ऐसी इच्छा ही नहीं है। जैसे बहुत प्यारा कोई रिश्तेदार जब मर जाता है किसी का, तो थोड़ी देर के लिए सबके अंदर वैराग्य आ जाता है, क्या रखा है संसार में, मर खप जाना, क्या रखा है संसार में, कुछ नहीं है। लेकिन ये वैराग्य शमशानी वैराग्य होता है, जैसे शमशान में आप कुछ घंटों के लिए जाते हो और फिर बाहर आ जाते हो, ऐसे ही शमशानी वैराग्य में लोग कुछ समय के लिए जाते हैं, कुछ दिन कह लो या कुछ घंटे कह लो, फिर उसमें से बाहर आ जाते हैं, फिर वो वापिस सो कॉल्ड नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाते। जो कभी हो और कभी नहीं हो उसे वैराग्य नहीं कहते, मैंने चाहिए ही नहीं। यहां तलक आपने बहुत बार कहानियां ऐसी पढ़ी होंगी, ध्रुव तपस्या करते, प्रहलाद तपस्या करते, इंद्र आ जाते हैं, देवता आ जाते हैं और वो कहते हैं मांग क्या चाहिए तुझको, कहते कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सत असत का विवेक है, भोगों का चाह नहीं, चित्त में वैराग्य है। नचिकेता को यमराज ने कहा था कठोपनिषद में कि तू 3 दिन से मेरे दरवाजे पर बैठा मेरी राह तक रहा था, आज मैं वापिस आया हूं, तू ब्राह्मण है और ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके इंतजार करे, ये मेरे सर पर पाप चढ़ा, तू बोल मैं तुझे क्या दूं, मांग क्या दूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना झूठा आश्वासन, एक है सामने खड़ा है बंदा दे रहा है, ले ले क्या चाहिए ले ले। यमराज ने कहा नचिकेता मैं तेरे को 10,000 वर्ष की आयु देता हूं। नचिकेता बोले नहीं चाहिए। क्यों? 10,000 बाद में तो फिर तुम आई जाओगे ना लेने, क्या करूं ऐसी उम्र का। यमराज ने कहा नचिकेता मैं तुमको 10,000 वर्ष आयु के साथ साथ सुंदर स्त्रियां और महल और संपत्ति और धन भी देता हूं, ले लो। नचिकेता कहते जब शरीर ही असत है और संसार के भोग सब समाप्त हो जाते हैं। तो मैं क्या मांगूं, आप मेरे को ऐसी चीज क्यों देना चाहते हो जो खत्म हो जाती है। यमराज ने कहा, पूछो, मांगो, क्या चाहिए। नचिकेता ने कहा, अगर देते ही हो तो मुझे यह बताओ, क्या कोई ऐसी विद्या भी है जिससे मृत्यु के चक्र से बाहर आया जा सकता है। के मुझे ये जानना, देना है तो ये दो। अब देखो ना, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई तिरुपति जाता है, कोई दरबार साहब जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, दरगाह में जाता है, क्या मांगते हैं? धन, दौलत, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति, चुनाव जीत जाऊं, बच्चे, परिवार, शादी, पोते, पोतियां, संकट टल जाएं, रोग दूर हो जाएं, इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं कोई? जिसके वैराग्य आ गया है वो सोचो आप क्या मांगेगा। क्या मांगूं किछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। मेरे आंखों के देखते देखते मर गए, चले गए, खत्म हो गए। एक बाढ़ आती है, हजारों लोग तबाह हो जाते, मर जाते। जिन घरों का अभिमान करते हैं, घर सारे नदियों में डूब जाते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट हमेशा ही साथ चल। आप कोई ऐसी नीची वस्तु की बात बोल सकते हो जिसके ऊपर कुछ ना हो? तो मन का स्वभाव है, मन कोई भी विचार करता है तो उसका एंटी, उसका अपोजिट, उसके विरुद्ध साथी उसका जोड़ा आ जाता है। मन सम है जिसका, मतलब मन कितना शांत हुआ। अ माइंड इन विच देर इज नाइदर अ थॉट नॉर एन एंटी थॉट कैन बी कॉल्ड अ स्टेट ऑफ सम। इजंट इट अमेजिंग? अभी ज्ञान हुआ नहीं, ये ज्ञान के अधिकारी की बात कर रहे हैं। अब मन की समता कैसे आएगी? बुद्धि के तल पर विचार से, और मन के ही तल पर और शरीर के तल पर अगर हम कहें तो वह दो ही तरीके हैं, आसन प्राणायाम और मंत्र, मंत्र की धारणा। माने देखो, अब सोचो एक आदमी ने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और दूसरा कोई विचार आया ही नहीं। अभी विचार क्यों आते हैं? क्योंकि वैराग्य नहीं, चिंता है, ये करना, वो करना, ये करना, योजनाएं, प्लानिंग, इच्छाएं, डिजायर्स, होप, एस्पिरेशंस, फियर्स, क्या कुछ नहीं भरा हुआ मन में। हम वैराग्यवान किसको कहते हैं? जिसको कोई लेना देना ही नहीं। अब उसका मन विचलित ही नहीं होता, द्वंद में ही नहीं जाता। अब एक धुन पकड़ ली, राम नाम चल रहा है या कहो शिव नाम चल रहा है, कोई भी एक मंत्र बस चल रहा है, बस वही चल रहा है, वही चल रहा है। और मंत्र करते 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 एक स्थिति ये आई कि अब मन इतना शांत हो गया कि मंत्र भी नहीं हो रहा, उस अवस्था को कहते सम। और जिज्ञासु में ये होनी चाहिए। आपने अनुभव किया जिस दिन तुम ईमानदारी से योगासन करते हो, ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से करते हो, और ईमानदारी से जिस दिन प्राणायाम करते हो, उस दिन मन दूसरे दिनों की तुलना में ज्यादा चुप होता है। मन एकदम चुप है जिसका, बोलता ही नहीं, इसे कहते समावस्था। इस सम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन के अंदर से विषय विकार वासनाओं को तो निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक ये पड़े हैं तब तक मन तो हिलता ही रहेगा। मन समझिए ऐसे ही है जैसे हवा चलने पर पानी के सतह पर लहरें बन जाती, और जब हवा ना चल रही हो तो पानी ठहर जाता है, और ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पेड़ का, चांद का, मनुष्य का, जो भी नजदीक होगा अच्छा पड़ेगा उसमें। इसी तरह जिसका मन सम है, मन की झील जिसकी ठहरी हुई है, विषय वासना विकार क्रोध राग द्वेष, ये जितने द्वंद हैं, जब ये द्वंद की हवा चलेगी ना तो मन तो हिल ही जाएगा। और षट संपत्ति का जो सबसे पहला हिस्सा है सम, देखिए जब मैंने बोला विवेक होना चाहिए जिज्ञासु में, तो आपको लगा कि वो तो है ही है हमें, सत सत का पता ही है हमें, अगर मैं अभी पूछती तो सब बोल देते। हमने कहा दूसरी बात, जिज्ञासु का अंतकरण में वैराग्य होना चाहिए। तो देख लो आपने अपने ही मन में ये ठीका लगा लिया होगा कि सब कुछ छोड़कर यहां आश्रम में बैठे हैं, तो वैराग तो है ही है, परिवार की सुख सुविधा छोड़कर बैठ गए हैं, वैराग तो है ही है। लेकिन ये षट संपत्ति आपके मन की पोल खोल देती है, और तुम भी जानते हो कि मन में कितने विचार चलते हैं। ख्याल करना, जब मन टिकता है ना तो शरीर भी टिक जाता है, आंख की पुतली भी टिक जाती है, और जिसका शरीर ही हिलता रहे, कईयों को देखो उंगली ऐसे ऐसे करते रहते, कपड़े को ऐसे ऐसे करते रहते, कुछ चलता रहता है, माने मन चल रहा है, मन चल रहा है इसलिए उंगली चल रही, मन चल रहा है इसलिए कपड़े चल रहे हैं, मन चल रहा है इसलिए इधर उधर आंखें चल रही कि इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, यहां वहां देखना चाह रहा है मन, मन समता में नहीं है। अस्थिर मन, विचलित मन, उस सागर की तरह है जिस पर लहरों का बवंडर मचा हुआ है, ऐसे उथल पुथल सागर की सतह पर चांद का प्रतिबिंब कभी नहीं पड़ेगा। बड़ी लॉजिकल सी बात है, जिसका मन अस्थिर है उसके मन में ज्ञान तो दूर, ज्ञान का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। तो जिज्ञासु को षट संपत्ति के इस पहले अंग को अपने जीवन में लाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मन सम रहे। आज किसी ने तारीफ कर दी, उछल पड़ा। आज अगर किसी की तारीफ सुन के उछले हो तो विकल्प साथ में ही आएगा कि पता नहीं कल करेगा नहीं करेगा इज्जत मेरी। इसलिए जीतने वाले लोग भी परेशान उतना ही होते हैं जितना हारने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। हारे को तो दुख है, पीड़ा है, जीते को चिंता है कि ये जीत की खुशी कितने दिन रहेगी। तो मन सम अवस्था में अगर है तभी कोई कह सकता है कि उसके मन में विवेक और वैराग्य है। अगर मन सम नहीं है तो फिर विवेक कैसा, मन सम नहीं है तो फिर वैराग्य कैसा। ईसा जीसस के शिष्य पीटर पहली मुलाकात से उनके साथ हो लिए थे, और एक दिन पीटर के घर से संदेश आया कि उसके पिता मर गए। तो वो जीसस के पास जाके कहता है कि मास्टर, कैन आई गो टू माय होम टू बैरी माय फादर एज ही हैज पास्ड अवे। जीसस ने पलट के पीटर को देखा और उसको पूछते हैं, पीटर क्या तुम्हारे गांव में इतने लोग भी नहीं हैं जो एक मुर्दे आदमी को दफन कर सकें? जीसस के इस प्रश्न का उत्तर पीटर ने मौन रह के दिया, क्योंकि इतना तो वो भी जानता है कि उसके गांव में बहुत लोग हैं, एक मुर्दा को दफनाने के लिए गांव में कम से कम नहीं तो 200-300 लोग हैं। जीसस ने सीधे नहीं कहा कि मत जा, क्यों कहें वो कि ना जा, उन्होंने एक प्रश्न पूछा वापिस, क्या तुम्हारे गांव में इतने लोग नहीं हैं जो एक मुर्दा को दफना सके। और पीटर बात समझ गया, गया नहीं वो। कहानी इस विषय में नहीं कुछ बताती कि उसके मन की अवस्था क्या रही, मैं जान नहीं सकता हूं कि जीसस ने ऐसी बात कह दी है या कि वो गुस्से में रहा कि जीसस ने मेरे को जाने क्यों नहीं दिया। इस विषय में कुछ नहीं कहानी बोलती, इतिहास बस इतना ही कहता है कि पीटर गया नहीं। उसके मन में संकल्प विकल्प की उथल पुथल हो गई थी ना, तभी तो पूछने आया, नहीं तो पूछने की भी क्या जरूरत, क्या आवश्यकता पूछने की। पूछ रहा है तो मन में इच्छा जाने की तो हो ही गई है। अब उस इच्छा के जड़ में पानी देते हैं जीसस ये प्रश्न पूछ के, और उसको वापिस अपने पथ पर अडिग रहकर चलने की प्रेरणा देते हैं। अब जिसे ये निश्चय हो शरीर तो असत्य है, मिट्टी का पुतला मिट्टी होगा ही, और मिट्टी अगर हो गया ये खबर आई है तो इसमें हैरत की बात कौन सी हुई, इसमें शोक की बात कहां से आई, दुख की बात कहां से आई। किसका शरीर असत नहीं है, किसका शरीर मरने वाला नहीं है, है कोई ऐसा मनुष्य जिसका शरीर मरेगा नहीं। तो किसी की मृत्यु की खबर सुन के तुम्हारा मन जब बेचैन होगा तो जानना उस व्यक्ति से तुम्हारा राग था इसलिए बेचैन हुआ। ये तो दुनिया में कितने लोग मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज अखबार भरी होती है, यहां 100 मर गए, यहां 200 मर गए, यहां 2 मर गए, यहां 4 मर गए, यहां 30 मर गए, कहीं बस पलट गई नदी में, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं जहाज क्रैश हो गया, कहीं बाढ़ में लोग बह गए। आप तो रोते नहीं हो क्योंकि उनके साथ राग नहीं, इसलिए उनके मरने जीने से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपने भाई, अपने माँ, अपने बाप, अपने बहन, अपने मित्र, जिससे भी ममता है, उनके मरने की अगर खबर आ जाए तो मन बेचैन हो जाएगा। तो जिसके वैराग्य नहीं है उसका मन समता में नहीं रह सकता, जिसको विवेक नहीं है उसके मन में सम अवस्था नहीं रह सकती। तो विवेक और वैराग्य ये वो सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़ने के बाद तीसरी समता की सीढ़ी पर जिज्ञासु चढ़ जाता है। षट संपत्ति में पहला है सम, दूसरा है दम। दम मतलब दमन नहीं, दम मतलब कि इंद्रियां उसकी इच्छा के बगैर भागती नहीं फिरती। एक तो है खाने की इच्छा हो रही है, मिल नहीं रहा, या खाने की वस्तु सामने है, खाना भी चाहता है, पर बाकी सब कहते नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को रोक रहा है। तो जो जबरदस्ती कर रहा है इंद्रियों को कंट्रोल करने की, वो तो दमन कर रहा है। दम का अर्थ दमन नहीं है, दम का अर्थ कि इंद्रियां इतनी शांत हैं। अब देखा जाए तो इंद्रियां अपने आप में थोड़ी चलती, पीछे तो मन चलता है। और जिसका मन सम अवस्था में आ गया उसकी क्या इंद्रियां भी संयत अपने आप ही होनी जाएंगी क्या? जिसका मन बेचैन उसकी इंद्रियां बेचैन। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, जिसका मन विचार में चलता रहता है उसकी आंखें चलती रहती हैं, उसके हाथ चलते रहते हैं, जीभ चलती रहती, बोलता बहुत ज्यादा है वो। ज्यादा कौन बोलता है? जिसका मन ज्यादा चलता है। और कई बार ज्यादा बोलने पर जब हम कुछ एक लोगों को डांट देते हैं तो वो फिर मेरे को चिट्ठी लिख देते हैं, हम ना मौन होना चाहते हैं। भैया मौन क्यों होते हो? मौन में तो तुम अपने ऊपर दमन कर रहे हो, मन का अत्याचार कर रहे हो। अत्याचार थोड़ी करना है, आवश्यकता पड़ने पर बोले, और निरावश्यक बोले ही नहीं। क्या बोले? इंद्रिय का दम। दम मतलब मन जिसका समता में है उसका, समझ लीजिए इंद्रिय तल पर, फिजिकल तल पर उसका ये रिजल्ट होता है कि उसकी इंद्रियां भी संयत हो जाती। सम दम तीसरी बात षट संपत्ति की है श्रद्धा। श्रद्धा होती किस पे? गुरु पे। कितनी, कहते ईश्वर से गुरु में अधिक दारे भक्ति सुजान, ईश्वर से भी ज्यादा गुरु पर निश्चय है जिसको। ईश्वर तो देखे नहीं, गुरु तो दिख रहे हैं, तो फिर ईश्वर से क्या लेना देना। तो मंदिर मस्जिद मीनार गुरुद्वार ये सब तो मनुष्यों के बनाए हुए चिन्ह हैं। कहते ना मेरी श्रद्धा। बुल्ले शाह को एक बार उसके गांव के लोगों ने कहा कि चलो तुम्हें हम हज करा लाते हैं, पैसा हम खर्च कर देंगे, चलो। बुल्ले शाह कहते रुको रुको, अभी आया। वो गए अपने गुरु के द्वार पर, गुरु बाहर आंगन में बैठे थे चारपाई पे। बुल्ले ने जा करके उनको सजदा किया और उनकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलाम पढ़ते हुए तीन चक्कर लगाए, चार लगाए, पांच लगाए, छह लगाए। तो गुरु ने कहा क्या कर रहे है? कह रहा अपने काबे को परिक्रमा दे रहा, मेरा काबा तो तू है। लोग कह रहे थे हज करा, तो मेरे भी मन में शौक आ गया, सब जा रहे हैं मैं भी जाऊं, तो इसलिए यहां आ गया। तो सात चक्कर आठ चक्कर लगाए जाए लगाए जाए। जिन लोगों ने बात करी वो भी पीछे पीछे आ रहे थे कि ये हज की बात सुन के गया कहां। तो देख रहे हैं कि अब इस्लाम में किसी इंसान को काबा शरीफ के मुकाबले देखना इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं। बुल्ला शाह कोई बेवकूफ गंवार आदमी नहीं था, अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा स्कॉलर था, कुरान शरीफ को हदीस को जानने वाला था और सैयद था, मोहम्मद साहब के खानदान से था। स्वामी निश्चल दास जी कहते हैं कि गुरु का वचन वेद वचन, वेद वचन से भी बड़ा जिसको प्रतीत होता हो। इसीलिए गुरु की उपमा में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो असीम प्रेम प्यार इकरार जो गुरु के साथ जुड़ जाता है इसको कहते हैं श्रद्धा, और ये षट संपत्ति का तीसरा अंग होता है। फिर देखें, श्रद्धा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक मन में और किसी के साथ राग जुड़ा है या द्वेष जुड़ा है। खाली सिर झुका देने का नाम तो श्रद्धा नहीं, गुरुजी बोल लेने का नाम श्रद्धा नहीं। विवेक होना चाहिए, मन समता में होना चाहिए और इंद्रियों का दम होना चाहिए और अटूट वैराग्य होना चाहिए, तो श्रद्धा शब्द का वास्तविक अर्थ मालूम होता है। याद रहे, परिवार से जिसकी ममता है वो गुरु पे श्रद्धा नहीं कर सकता है। श्रद्धा कहते ही उस आग को है जो सब कुछ जला के ही टिकती है, ऐसे नहीं टिकती। पानी और आग एक जगह पे नहीं टिकते। मन का राग, मन की आसक्ति पानी है, वो तो श्रद्धा आग है। आग और पानी एक जगह नहीं हो सकते। तो जिसके मन में किसी के प्रति, एक घास के तिनके के प्रति भी अगर राग है तो जाने अभी श्रद्धा नहीं है। जिसे श्रद्धा लोग बोलते हैं, दैट इज मोर टू डू विद कन्वीनियंस। दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों से संबंध रखना सबको अच्छा लगता है, तो ऐसे ही गुरु से भी संबंध, गुरु भी तो सबसे अच्छे हैं, तो गुरुओं से संबंध रखना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी हंसे बोले, घर आए जाए, बातचीत करे, हमसे पूछे, हमसे बात करे, अच्छा लगता है। तो आते जाते रहते हैं, तो कभी मिल मिला लेते हैं, इसको श्रद्धा नहीं बोलते। सम दम श्रद्धा चौथा संपत्ति है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थ शरीर पर सुख दुख हो, सर्दी गर्मी हो, कठोरता हो, वो हर प्रकार की शारीरिक कुछ एक्सट्रीमिटीज आ जाएं, वो बर्दाश्त होती, चिल्लाता नहीं। इसी तरह माइंड के लेवल की एक्सट्रीमिटीज, मान अपमान, ये माइंड की, मन के तल की पीड़ाएं होती हैं या मन के तल की बसंत ऋतु होती, जब कोई बड़ी तारीफ करे भूल जाता है, और नहीं कोई तारीफ करे और पूछे नहीं, या कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो दुखी हो जाता है, तो मतलब मन की तितिक्षा नहीं। शरीर की तितिक्षा है सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करना, और भूख लगी एक है चिल्लाता है भूख लगी खाने को दो खाने को दो, और फिर खाना मर्जी का ना मिले तो गुस्सा आ जाए, और एक है भूख लगी उसे भी दिखता है तो वो कहता है कि इस शरीर के अंदर एक जो गड्ढा है वहां पर जठराग्नि जल रही है, वहां कुछ चाहिए। अब दोनों में बड़ा फर्क हो गया बात का। योग वशिष्ठ में आया था, पेट वो गड्ढा है जो कभी भरता नहीं है, तुम डालते रहो सामान डालते रहो सामान डालते रहो, पेट फिर खाली का खाली, हर छह घंटे में फिर खाली, हर छह घंटे में फिर भूख, हर छह घंटे में फिर मांगता है, तो सुबह खाए दोपहर खाए शाम खाए रात खाए 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 खाए, सोने से पहले फिर कुछ खाए पिए, भूख बर्दाश्त, प्यास लगी बर्दाश्त, तड़पता नहीं, भूख प्यास। अब ये नहीं कह रहे कि भूखे बैठे रहो, अब हम इस समय ये नहीं बोल रहे कि प्यासे बैठे रहो, इस समय हम ये कह रहे हैं कि भूख लगने पर देह को भूख लगी है, ये सत असत का विवेक सामने रखते हुए, मन सम रखते हुए, इंद्रिय दम रखते हुए, पर भूख प्यास को अगर उसको पूर्ण करने का कुछ साधन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, भूख सताती नहीं, प्यास सताती नहीं, सर्दी दुख नहीं देती, गर्मी दुख नहीं देती, ये तो हुए शरीर के तल की तितिक्षा। और मन के तल की तितिक्षा क्या है, कोई तारीफ कर दे तो, कोई गाली दे दे तो, कोई पूछे तो, कोई ना पूछे तो, मन में कोई संकल्प विकल्प, क्योंकि अगर संकल्प विकल्प उठ गए तो सम नहीं रहा मन, और कोई मुझे पूछे ये चाह रह गई तो फिर वैराग्य कैसा, और कोई दिख रहा है तो फिर विवेक कैसा। सत्य सत का विवेक तो यही था ना, अब असत्य शरीरों के पूछने या कुछ ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है। सम दम श्रद्धा तितिक्षा और समाधान। समाधान मतलब बुद्धि में कोई संशय ही नहीं रह गया। देखो अभी ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान की तैयारी है। समाधान, बुद्धि में कोई संशय ही नहीं, किस विषय में, कि संसार क्या पता सच है कि नहीं सच है। अभी क्या है, सुनते हैं तो लगता है नहीं ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, संसार तो बेकार है, लेकिन थोड़ी देर बाद वासनाओं के वेग के कारण फिर वही सच लगने लग जाता। अभी गुरु पे श्रद्धा आ रही है, अभी मन ने गुरु का ही एनालिसिस शुरू कर दिया तो लगानी ऐसे ही है, कहने की बातें होती हैं सारी, ऐसे ही है, हमने भी देखा है, गुरुजी को भी बड़ा गुस्सा आता है, हमें कहते मन सम होना चाहिए। अब ये क्या है, संशय। समाधान किसको कहेंगे, कोई संशय नहीं, ना अपने विषय में, ना जगत के विषय में, ना गुरु के विषय में, ना जीवन के लक्ष्य के विषय में। और कभी संसार नहीं अच्छा लगता, कभी लगता है, कभी लगता है समय बर्बाद काहे कर रहे, यहां पर बैठ के सारी दुनिया शादी कर रही है, समय पे शादी करेंगे, समय पे बच्चे होंगे, समय पे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े हो जाएंगे, फिर वो हमारी सेवा करेंगे, अपने शान से अपने घर में बैठेंगे, अपनी गाड़ी में घूमेंगे, अपनी इकलौती बीवी के साथ सुख के साथ सोएंगे, ये सारे सुख छोड़ करके हम यहां बैठे क्यों हुए। ये जो मन में संशय आता है जिसके ये नहीं है। समाधान का एक अर्थ मन के तल पर यह भी है कि मन अब शोर नहीं करता, टिक गया मन, पूर्ण एकाग्र हो गया, टोटली कंसंट्रेटेड, इतना ठहरा है कि जैसे चुप लग गई है, इतना मन चुप हो गया है, गुम हो गया है। समाधान। योग के अष्टांग मार्ग में यम, पांच नियम, पांच, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ठीक, फिर धारणा, फिर ध्यान, और ध्यान की परिपक्व अवस्था को कहते समाधि। तो समाधि का ही लघु रूप है समाधान। तो मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो, ऐसे जिज्ञासु ने समाधि का अनुभव कर लिया होता है ज्ञान से पूर्व ही। समाधि अर्थ सम धी, धी अर्थ बुद्धि, धियो यो न गायत्री मैन, धियो यो न प्रचोदयात, मेरी इस बुद्धि को प्रचंड रूप से तेजस्वी करें। ध्यान की सिद्धि जिसकी हो चुकी है, ऐसी स्थिति वाले को हम कहेंगे कि इसको समाधान है। तो दूसरे अर्थ से हम ये भी कह सकते हैं, अष्टांग योग की पहली समाधि जिसे हम सबीज समाधि कहते हैं, वो जिसने अनुभव कर ली है वो ही ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी होता है। अब जो बैठे समस्थिति मेरी हुई के नहीं हुई, अगर पांव खुले किए हैं, टांगे खुली करी हैं त्रिकोणासन लगाने के लिए, तो पांव के अंगूठे सामने हैं कि नहीं, कंधे मेरे बराबर हैं कि नहीं, गर्दन सीध में है कि नहीं, अब ये सब देखने जानने के लिए पूरी एकाग्रता नहीं होती, इसीलिए तो पता नहीं चलता। और अजब बात, गलत तुम करो और जब कोई तुम्हें टोके के सीधे करो तो गुस्सा आता है, क्रोध, मतलब अंदर अहंकार भी पूरा है, आता जाता कुछ नहीं, पर सुनने को भी राजी नहीं है कि टोक भी कोई क्यों रहा है, कर तो रहे ठीक तो कर रहे और कैसे करे। ये जो झल्लाट आती है, खींच आती है, गुस्सा आता है, हालत तो बहुत खराब हो गई। फिर ज्ञान बातें नहीं है कि एक बैठे सुनावे जी गुरुजी और चेले बैठ के सुन लवे और हो गया ज्ञान। ज्ञान का ये अमृत फल उनको प्राप्त होता है जिन्होंने अष्टांग योग की सीढ़ियों को भी चढ़ा। और शास्त्र ये कहता है जिसके अंतःकरण में समाधान है वो जिज्ञासु। अभी जिज्ञासु है वो, ज्ञान हुआ नहीं, जिज्ञासु बैठा। जिज्ञासु मंत्र जप करने, तो मंत्र जप करते में कोई इधर उधर का विचार ही नहीं, मन ठहरा क्यों, मन में तो वैराग्य है, विवेक है, और मंत्र करते 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 मन टिक गया, इतना टिक गया कि शरीर कहाँ बैठा वो भी नहीं पता, सो गया नहीं नहीं नहीं, खो गया नहीं नहीं नहीं, जग गया। जहां मन पूर्ण रूप से सम हो जाता है तहां समाधि का अनुभव हो जाता है। समाधि बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी क्या है दिक्कत, पांच यम, पांच नियम। यम थे अपने लिए, नियमों का लेना देना जब हम दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं उसके साथ, जिसका स्वाध्याय नहीं, जिसको आप परिग्रह नहीं, जिसके अंदर अस्तेय नहीं, झूठ नहीं जानता, बात वो बात बोलता है, वो बात कहता है, झूठ झूठ भरा है जिसके अंदर, आस्ते नहीं, अब परिग्रह नहीं, चीजें होल्ड करना, जोड़ते रहना, बचा के रखना। अभी एक कटोरी खीर खा ली, एक खीर की कटोरी वो छुपा के कहीं संभाल के रख दी, बाद में खाऊंगा, ये भी परिग्रह ही हो रहा है, ये भी जोड़ना ही हो रहा है। यम नियम, फिर आसन। आसन में सिद्धि का अर्थ क्या होता है, आसन में सिद्धि का अर्थ यह होता है कि जिस आसन में गए उस आसन में चाहे घंटों बीत जाए शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। आसन अर्थ आसन स्थिरम सुखाय, स्थिर भी है और सुख भी है उसमें, ये नहीं कि कष्ट हो रहा। जिसने आसनों को कर करके शरीर बना लिया लचीला और अंदर तितिक्षा है। अब बताइए मुझे, ऐसा व्यक्ति जब तपस्या करेगा, ऐसा व्यक्ति जब मंत्र जप में बैठेगा, तो उसको जरूरत लगेगी कि मैं हिलूं, मन ठहरा हो, जब हिलना कौन चाहता है। फिर जो मन हिलता है शरीर हिलता है, या मन टिका रहता है शरीर भी टिका रहता है। समाधान, ध्यान की परिपक्व अवस्था। ज्ञान मार्ग में हम ध्यान को बहुत ऊंची चीज नहीं मानते हैं, ध्यान पर बहुत अचूक साधन है, ये मन को ठहरा देता है। पर मन ठहरेगा का किसका, जिसके कोई हवाएं नहीं चलती। हवा किसकी, इच्छा की। हवा किसकी, वासना की। हवा किसकी, अब संस्कार कौन सी हवा चला देंगे पता ही नहीं है, संस्कारों का तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो पड़े हैं अवचेतन मन में। अच्छा, इन संस्कारों के भी जो बीज हैं, आप ऐसे समझिए, एक किसान ने खेत बोया, पहले बीज उसके पास थे तभी खेत बोया, फिर फसल उगी, उसने फसल काटी तो लगभग आधी से ज्यादा फसल वो घर ले जाता है, कुछ बेचता है, कुछ खाने के लिए घर रखता है, लेकिन उसी फसल में से कुछ बीज वो अगली फसल के लिए संभाल के रख लेता है। तो एक बीज तो पहले से थे उसके पास जिससे उसने वो खेत बोया, और अब जो फसल तैयार हुई उसमें से फिर नए बीज आ गए, तो उसने वो अगले साइकिल के लिए बीज संभाल लिए। तो एक संस्कार तो पड़े हैं आपके अवचेतन मन में, और उन संस्कारों के करंट यूजेज वाले बीज भी वहीं पे पड़े हैं, लेकिन वो जो अगली फसल की तैयारी के लिए उसी में से निकाल के जो अलग रख लिए, अब इन बीजों को एक अंधेरे जगह में रखते हैं, धूप ना लगे, हवा ना लगे, ताकि खराब ना हो जाए, तो उसको भी जमीन में गाड़ देते हैं वो, और कोई गोदाम में रख देते हैं। तो एक बीज तो उसने खेत में बो रखे, एक बीज उसके अलग से गोदाम में फिर से पड़े हुए। तो अवचेतन मन में तो बीज हैं ही जो उगते रहते हैं, लेकिन इन बीजों का एक बहुत बड़ा भंडार कहां पड़ा है, अचेतन में। अचेतन अर्थ होता है अज्ञात, पता ही नहीं है जिसका, कौन कौन से पड़े हैं, कैसे कैसे पड़े, पता ही नहीं है जिसका। तो अवचेतन में कौन से बीज होते हैं, जो करंट वासनाओं में तब्दील होते रहते, और अचेतन में बड़ा भंडार पड़ा है। तो साधक के पास समय कहां है व्यर्थ करने को, 60-70 साल के इस छोटे से मानव जीवन में इतना बड़ा काम करना है। वो कहते मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की बकवास और मन की तृप्ति और इंद्रियों को मैं संतुष्ट करूं। देखो अभी आपको जलेबी खिलाए, बड़ा मजा आएगा, आधा किलो खा लोगे, एक किलो खा लोगे, उसके बाद कहोगे बस और नहीं। पर क्या ये और नहीं जीवन भर के लिए, नहीं, उतनी देर के लिए, क्षणिक मात्र, टेम्परेरी कह रहे हो और नहीं खाना, किसी समय में फिर इच्छा आ जाएगी। जो खाया भोगा देखा सुना चखा है उनके इम्प्रेशंस तो पड़े हैं, यही इम्प्रेशंस फिर समय पा करके जागृत हो जाते हैं और आपके अंदर वासना को उत्पन्न कर देते हैं, और यही वासना को थोड़ा अटेंशन देते रहो तो यही वासना जो है ये इच्छा का रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और ये इच्छा बड़ी मुश्किल है अब इसको रोकना, अब तो वो काम करवा के ही रहेगी, और आपको पता तब चलेगा जब काम कर चुकोगे, उसके पहले तो बेहोशी है, अज्ञात है ना। तो मिस्टीरियसली इट इज वर्किंग इन द माइंड, हाउ फोर्सफुली इट ड्राउन्स यू इन दैट, इट्स अमेजिंग। इसीलिए अज्ञात कहते, इसीलिए अचेतन कहते। जितनी पावर सबकॉन्शियस की है उससे ज्यादा पावर हमारे अनकॉन्शियस की है, बहुत बहुत पावरफुल अनकॉन्शियस। और जिज्ञासु को यही चिंता लगती है कि प्रभु क्या होगा, यहां तो अवचेतन का ही कोई ठिकाना नहीं, अवचेतन तो दूर की बात है, अभी तो चेतन मन का ही नहीं पता चल रहा, कितने कितने विचार की आंधियां चलती रहती है। इसको शांत करूं तो अवचेतन मन से कई कुछ निकल आता है, इसको ठीक करूं तो अचेतन से पता नहीं कब क्या निकल आएगा, मेरा क्या होगा। तो कबीर हो, गुरु नानक हो, इनके कितने ही सुंदर ऐसे शब्द हैं जिसमें उन्होंने यही प्रार्थना की है कि प्रभु मेरा होगा क्या, कब कौन सी इच्छा जग जाए पता नहीं, कब कौन सी वासना इच्छा बन जाए पता नहीं, कब कौन सा संस्कार किस वासना को जगा दे पता नहीं। और ये संस्कार के बीज अवचेतन में भी हैं और अचेतन में भी हैं, तो हम तो फंस गए। कबीर का एक है, बाबा अब न बसो ए गांव, करी करी का लेखा मांगे। ये इस संसार रूपी गांव में मुझे नहीं रहना, यहाँ हर विचार से उत्पन्न हुए कर्म का लेखा जोखा मुझसे लिया जाएगा। और विचार करने पर मैं रोक कैसे लगाऊं, विचार पे रोक लगा भी लूं तो वासनाओं का क्या करूं, वासनाओं को तो रोक भी लूं मैं पर संस्कारों का क्या करूं, और संस्कारों का तो कुछ पता नहीं तो इनके बीजों का क्या करूं। तो ये सब विषय सुन के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो, और फिर इस वैराग्य से जब साधक जप करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, अभी क्या है प्राणायाम करते करते ख्याल आ जाता है ये है वो है ये है वो है, शरीर है, कर्म तो चलेंगे, कर्म तो चलेंगे, लेकिन यदा कदा जहां अवसर मिले तहां अपने आप को आसनबद्ध करके अपने अंतर प्रत्याहार में उतर जाना चाहिए, प्राणायाम में उतर जाना चाहिए, जप में उतर जाना चाहिए। एक दृष्टि से अगर विचार आपके सेवा कार्यों के विषय में उठ रहे हैं तो वो निष्काम कर्म, अच्छी बात है, मन की शुद्धि होती है, अच्छी बात है, आपकी पुण्य राशि बढ़ रही है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर उससे बड़ी सच्चाई यह भी है कि आपको इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि जिस शरीर से कर्म कर रहा हूं वो शरीर असत है। अपने लिए करे, घर के लिए करे, कि आश्रम के लिए करे, शरीर तो सत नहीं हो जाना, वह चिंतन अपनी जगह पे। तो समाधान एक बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। अब आप सोच के देखिए, पहले विवेक आया, फिर वैराग्य आया, फिर सम आया, संकल्प विकल्प रहित हो गया मन, फिर दम आया, फिर श्रद्धा आई, तितिक्षा आई, और समाधान है। अब बताइए, ऐसे मन वाला आदमी जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ज्ञान सुने तो तत्क्षण उसको अनुभव नहीं होगा तो और क्या होगा। पहले सुनेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निध्यासन करेंगे। ये तो वो लोग बोल रहे हैं जिनको यही समझ नहीं आई है कि श्रवण किसको कहते। श्रवण है सुने हुए वचन का अर्थ सहित अनुभव हो जाना, इसको श्रवण बोलते। बुद्धि को समझ आना श्रवण नहीं होता। जब सुना मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं तो दृष्टा हूं, ये अनुभव में आ गया सुनते ही। पर किसको आएगा अनुभव, जो ज्ञान का अधिकारी होगा उसको। अनुभव हो गया सुनते सुनते, निश्चय हो गया सुनते सुनते, अब अपने इस अनुभव का रस बार 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 चखता है जब, तो उसको कहते मनन। और इस रस को चखते चखते जब पूर्णतः मन सब वृत्तियों से, सब विचारों से बीज सहित शांत हो जाता है, उस स्थिति का नाम निधिध्यासन। ये नहीं कि सुना मैं देन्द्रीय मन बुद्धि नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो दृष्टा हूं, अब उसको रटता रहे दिमाग में, मैं देन्द्रीय मन बुद्धि साक्षी नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो देन्द्रीय मन बुद्धि नहीं, मैं तो साक्षी हूं, ये मनन हो रहा है। मनन नहीं हो रहा, श्रवण ही नहीं हुआ तो मनन कहां से होगा। श्रवण माने शब्द का कान में टकराना नहीं है, श्रवण मतलब सुने हुए का निश्चय हो जाना, निश्चय विद ऑल क्लैरिटी, स्पष्ट एकदम। पर किसको होगा? ऐसा क्या हमने बोला कि भगवत गीता में जब हमने सारी कथा सुनाई है कृष्ण और अर्जुन की, तो अर्जुन ने सारा गीता का उपदेश सुनने के बाद कृष्ण को ये कहा कि अच्छा कृष्ण जी अब मैं जाता हूं और बैठ के इसका मनन करता हूं और फिर निध्यासन करूंगा और फिर स्वरूप स्थिति हो जाएगी ना? सुना? सुनते ही निश्चय, सुनते ही अनुभव, तत्क्षण उसी समय बात ही खत्म। क्यों इतनी जल्दी अर्जुन को क्यों हो गया? क्यों? अर्जुन अधिकारी था। छठा और आखिरी षट संपत्ति का अंग है, उसे हम कहते हैं उपराम। उपराम, ये बड़ी अजब बात है। शुरू में आया था वैराग्य। वैराग्य मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। उपराम इसी वैराग्य की परिपक्व अवस्था को कहते हैं। पहले क्या है, टसल होती, संसारी संसार में राग करता है और साधु कहते हैं छोड़ो छोड़ो। तो अगर पकड़ना बंधन है तो मैं सब छोड़ दूं, यह भी बड़ी टेंशन है। उपराम मतलब अब ये टेंशन ऐसी कोई है नहीं अंदर। संसार से जुड़े हुए को हम रागी कहते हैं, जो संसार से पीछे हट जाए उसे हम वैरागी कहते हैं, और जिसका राग और वैराग दोनों ही छूट जाए उसे हम उपरामी कहते हैं। उपराम अवस्था मतलब लेना देना ही कुछ नहीं रहा। भोगी को संसार से कुछ लेना है, त्यागी को संसार छोड़ना है, और उपराम मतलब न लेना है न छोड़ना, दोनों ही नहीं, वास्ता ही नहीं। मैंने छोड़ दिया इसका भी तो अभिमान होता है, जैसे मेरे पास इतना इतना सामान है इसका अभिमान होता है, ऐसे मैंने इतना इतना छोड़ दिया इसका भी अभिमान होता है, जिसके दोनों छूट गए राग और वैराग। अब जब मैं कह रही हूं राग और वैराग, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो फिर निचले तल पर गिर गया। उपराम मतलब ना राग ना वैराग, दोनों नहीं, उपराम। पूर्ण विश्राम में मन है, सम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान और उपराम, ये छह को कहते हैं षट संपत्ति। ये होती है संपत्ति जिज्ञासु की, जिसके पास ये संपत्ति नहीं है वो तो अभी बहुत गरीब है। और ज्ञान बहुत अनमोल और महंगी वस्तु है, इस ज्ञान रूप अनमोल वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये छह धन राशियां विवेक और वैराग्य के सहित तुमको कमानी होंगी। जिनके पास ये नहीं, विवेक वैराग्य और षट संपत्ति, उसको हम जिज्ञासु नहीं कह सकते। और जो जिज्ञासु नहीं है उसको ज्ञान का प्रतिबिंब भी नहीं मिलने वाला। चौथा जो साधन होना चाहिए एक साधक, एक जिज्ञासु के पास, उसको कहते हैं मुमुक्षुता। मुमुक्षुता अर्थ मोक्ष की इच्छा, जिसे अपने बंधन पीड़ा देते। मैं देह हूं, ये एक बंधन है जिसे ये पीड़ा दे। मैं मन हूं, अब दुख आया मन में, दुखी तुम हो जाते हो, तब ये याद थोड़ी रहता है कि मन में दुख आया और मैं मन नहीं हूं और मैं मन से अलग हूं। जब मन में दुख आता है तो दुख इतना बड़ा हो जाता है कि तुम ही खुद दुख स्वरूप हो जाते हो। इसीलिए तो जब तुम दुखी होते हो ना तो तुम्हारा चेहरा भी दुखी होता है। वैराग्य की कमी है, अपने ही देह से राग है, अपने ही मन से राग है, मन में उठी हुई भावनाओं में तुम इतना जुड़ जाते हो, तुम्हें याद ही नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि मन में समाधान नहीं है, मन में सम नहीं है, वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए संसार की छोटी छोटी बातों को सुन करके तुम खींचते हो, उसने ये कह दिया, क्यों कह दिया, उसने वो बोल दिया, क्यों बोल दिया। वैराग्य की कमी। और जिसके अंदर वैराग्य हो, मैं देह नहीं हूं ये निश्चय हो, तभी तो कहेंगे ना विवेक है उसके पास। अब उसको कोई गालियां भी देता है तो वह ऐसे ही सुनता है जैसे कोई तीसरे को गाली दे रहा हो, मुझे क्या, मेरे से क्या वास्ता। ये शरीर दूसरों को लगता होगा कि मेरा है या मैं है, मेरे लिए ना मैं है ना मेरा है, निकाल रहा है जो गाली, वो जिसको जानता है उसको गाली निकालता है, मैं जो हूं उसको ये जानता ही नहीं है तो गाली मुझ तक आई कैसे फिर। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है बंधन, और शरीर को मैं मानते ही सारा संसार, तुम्हारा संसार तुम्हारा परिवार होता है ना, दो भाई दो बहन दो भाभियां दो भतीजे माँ बाप जिस घर में रहते हो, तुम्हारे बच्चे जो शादीशुदा है उसके बच्चे उसकी बीवी उसका घर वाला, उनका तो इतना ही संसार है, बाहर संसार से उनका कोई लेना देना थोड़ी होता है। तो दे मैं हूं मानने वाले को बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती, और देह के इस बंधन से जिसको तकलीफ होती है वो कहता है कैसे छूटे, कैसे छूटे ये बंधन मन का शरीर का इंद्रियों का। इस इच्छा को हम मुमुक्षुता बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षुता। तो चार साधन, फोर एट्रीब्यूट्स ऑफ ए जिज्ञासु, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता, जिनमें ये चार चीजें हैं वो ज्ञान के अधिकारी हैं, जिनके अंदर ये चार चीजें नहीं हैं वो ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं। और प्राचीन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अन अधिकारी को ज्ञान सुनाना ये अत्यंत पापाचार होता है, ये बोलने वाले वक्ता को पाप लगता है। अन अधिकारी को यह ज्ञान देना कुकर्म है। इन चार एट्रीब्यूट्स, इन चार गुणों के साथ ही कोई जिज्ञासु कोई खोजी कोई स्पिरिचुअल एस्पिरेंट कहलाने के योग्य होता है, और ऐसे व्यक्ति को ज्ञान फलित होता है, ज्ञान उसका अहंकार नहीं।